ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் முண்டகோபனிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி பிரத்யக் போதானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
சுஷுப்தி அவஸ்தா மே சுக் ஜோ தும்கோ மிலா ஹை வோ சுக் கஹான் சே மிலே? விருத்தி கி நிவிருத்தி சே. ஜோ பாஹ்ய விருத்தி தி நா, பாஹ்ய விருத்தி तो बाह्य व्यक्ति की निवृत्ति से तुमको अंतर सुख को अभिव्यक्ति हुई. वो सुख को तुमने सोचा कि बाहर से आया, बाहर से आया, बाहर से आया. नारे पुत्र कामाया पुत्र प्रिया भवंती, आत्मा न सुख कामाया पुत्र प्रिया भवंती. न बारे भार्य जाया कमाया जाया प्रिया भवंती, आत्मा न सुख कामाया जाया प्रिया भवंती. ये तो आप लोग पसा जबा सुने हैं. याज्ञवल्क ऋषि अपने पत्नी मैत्री को उपदेश देते हुए, अरे संसार के विषयों में सुख नहीं आए, संसार के विषय सुख नहीं मिलता है, पुत्र के मिलन से सुख नहीं है. आपने सुख जो है पुत्र में तुमने देखा था, है ना. पुत्र नाम कमाया पुत्र प्रिय, आत्मा नस्तु कमाया पुत्र प्रिय भवंती. पुत्र प्रिय क्यों रखता है? आत्मा को आपने को सुख मिलेगा, इसीलिए वो सुख को तुमने पुत्र में देखा, धन में देखा, दौलत में देखा, जमीन में देखा, जायदाद में देखा, वस्त्र में देखा, आभूषणों में देखा. परंतु मिलते ही क्या होता है? वो सुख की जो चाहत है ना, वो शांत हो जाता है. वो शांत चित्त वित्तु आनंदम प्रतिबिंबते ही. अंतःकरण की वृत्ति शांत हो जाए तो आनंद की प्रतिबिंब आपने पड़ता है अंतःकरण में. वो अंतःकरण में पड़ा हुआ जो आनंद के प्रतिबिंब, उसको हम बाहर समझते हैं, विषय में समझते हैं. वास्तव में विषय के देखने से, मिलने से आनंद की अभिव्यक्ति भीतर होती है. तो आनंद तुम्हारा भीतर या भीतर के आनंद का प्रतिबिंब तुम बाहर देख रहे हो, इसलिए तुमको मालूम पड़ता है विषयों से हमको आनंद आ रहा है. इसलिए आत्मा आनंद, विषय आनंद, प्रत्येक बुद्ध आनंद कहां से मिलेगा? प्रत्येक बुद्ध आनंद किधर आए? अभी आत्मानंद आएगा. प्रत्येक बुद्धानंद कहो, आत्मानंद कहो, ब्रह्मानंद कहो, चंद्रगिन कुटस्थानंद कहो, साक्षी आनंद कहो, सब आनंद एक ही है. आनंद में भिन्नता नहीं है, भिन्नता है नामों में, उपाधि में. आने विषयानंद कहो, आगे आएगा पंचदशी में आएगा विषयानंद. तो मतलब कहने का, ये आनंद है सच्चित सुखम, सच्चित आनंद, सत आनंद बोध, आनंद बोध, आनंद प्रतीति, आनंद की स्थिति, आनंद का लय, आनंद के आनंद का भान, ये सब क्या है? क्या पर्यायवासी है. तो परा विद्या क्या करता है? परा दया तदक्षर अधिगम्य दे. कौन से कितने विद्या है? परा परा श्रेय प्रेय क्षेत्र क्षेत्र ज्ञा. गीता के अंदर भगवान ने क्षेत्र क्षेत्र के रूप में बोला कि नहीं? क्षेत्र विदम शरीरम कुंत्या क्षेत्र मित्तिया विधीयते. तुम्हारा शरीर है खेत, है खेत. यहाँ गेहूं बुझते हो, गेहूं बोना है शरीर में. खेत में बीज बोया जाता है, गेहूं बोता है, जौ बोता है, ज्वार बोता है, फल बोता है, वृक्ष बोता है. तो ऐसे खेत में शरीर भी खेत में क्या बोते हो? खेत शरीर भी खेत में दो बीज बोया जाता है, एक का नाम धर्म, एक का नाम अधर्म. धर्म अधर्म रूपी बीज तुम शरीर भी खेत में बोते हो, और बीज बोते वक्त होशियारी रखो. खेत में यदि तुमने बबूल का बीज बोया तो अनार खाने को नहीं मिलेगा. यदि तुम खेत में गेहूं बोया तो ज्वार खाने को मिलेगा नहीं. जो खाने का होगा तो वही बीज बोना. यदि मीठा खाने का मिला है, खाना चाहते हो मीठा, ऐसा ऐसा आफोसाम का बीज बोना, नारियल बीज बोना, नारियल का पानी पीना हो तो नारियल का पानी पीना हो तो नींबू का बीज बो दिया तो जादृशम भवते बीजम तादृशम लभते फलम. जैसा बीज बोया जाता है ऐसा फल मिलता है. जादृशम भवते बीजम तादृशम लभते फिलम फलम। ये शरीर रूपी वृक्ष या खेत में आने बात धर्म अधर्म रूपी बीज बोया जाता है, तो धर्म रूपी बीज पुण्य पुण्य पैदा करेगा, पुण्य वृक्ष पैदा करेगा, पुण्य रूपी वृक्ष मधुर सुख रूपी फल देगा, और अधर्म रूपी बीज बोया तो पाप रूपी अंकुर उत्पन्न होगा, पाप रूपी अंकुर क्या करेगा दुख देगा, दुख रूपी फल देगा। दुख रूपी फल चाहते हो कि सुख रूपी फल चाहते हो, ये आपने विचार करके बीज बोना होशियारी। एक वो आना एक महाराज आज थे, आज जानते हो आज किसका नाम है? दशरथ का पिता का नाम क्या है? रामायण पढ़ते हो ना, दशरथ के पिता का नाम क्या है? आप बोलो। आज है, आज आज अजर बिहारी बोल रो बोलते ना, अजर बिहारी नहीं बोलते रोज है, आज थे आज। आज एक बार गौशाला में या अश्वशाला में था, अश्वशाला में, अश्वशाला समझते हैं ना, जहाँ घोड़ा बांधता है, फिर आज अस्तबल अस्तबल है वहां था, तो घोड़ा देखभाल कर रहे, घोड़ा बड़ा अच्छा है, ये घोड़ा बहुत बेगवान है, ये घोड़ा बड़ा सुंदर है, ये घोड़ा फल काम में आता है, ये घोड़ा स्वामी भक्त है, ऐसे देख रहा था। इतना में एक महात्मा आ गया, महात्मा आया, नारायण हरि की आवाज लगाई, अरे अश्वशाला में आ गया, नारायण हरि की आवाज लगाई, तो महाराज इस समय क्यों जानता है नारायण हरि की आवाज लगाने वाला भिक्षा मांगता है, क्या मांगता है? भिक्षा मांगता है, क्यों? हरिद्वार आदि पे जो रहा होगा, राजस्थान में, हरिद्वार में, हरियाणा में, ऋषिकेश में जो रहा, वो मालूम, उनको मालूम पड़ेगा महात्मा लोग नारायण हरि क्यों बोलता है भिक्षा के लिए। तो राजा उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इसे मैं घोड़ा के लीद के जी गए। महात्मा ने कहा जो है वो दे दे, क्यों गृहस्थ आश्रम में जो कोई महात्मा आते हैं उसको खाली हाथ जाने नहीं देना चाहिए, खाली हाथ जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अधिज जैसे भगनाथ को गृहत प्रतिनिवर्तते सत अस्मय दुष्कृतम दत्व पुण्यम आदाय गच्छति। जिसके घर से अतिथि भिक्षा मांगने वाला खालिया चला जाता है, वो अपने पाप छोड़ करके गृहस्थ के दरबार में पुण्य, गृहस्थ का पुण्य लेकर चले जाते, ऐसा शास्त्र में लिखता है। इसलिए जो कुछ भी है तू, अच्छा ऐसी बात होता मिट्टी पर ये हमारे पास आए, घोड़ा का ले उठा करके दे दिया, महात्मा लेकर चले गया, पहुंचा हुआ महात्मा था जंगल में ले गया, जा करके आपने कुटिया के बगल में डाल दिया, वो धीरे 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 वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ऐसा कहते हैं। तो एक दिन महाराज जो है शिकार खेलने के लिए अपने साथियों के साथ जंगल गया, जंगल में शिकार हरिन के पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकाल गया, तो साथियों से बिछुड़ गया, तो साथियों से बिछुड़ जाने से इनका भूख लगा प्यास लगा, सामान पीछे रह गया, अब क्या करें? तो पहाड़ पर चढ़ करके देखता है कहीं महात्मा हो, पहाड़ी हो, जंगली हो, वनवासी हो, वहां के नहीं, क्यों कम से कम पानी से पिलावे प्यास लगी जोर, तो देखते हैं छोटी सी कुटिया है, तो महाराज कुटिया में गया, कुटिया में महात्मा बैठा हुआ था, कुटिया में महात्मा बैठा हुआ था, और देखा देखते राजा आज आया, तो उनको आसन दिया बैठने के लिए, आइए राजन बैठिए बैठिए, राजा बैठा है, तो पानी दिया पीने के लिए, पानी पिया स्वस्थ या, फिर उनको खाने के लिए जो रोटी जो भी भोजन उसके पास था दिया, फिर मट्ठा दिया, खाया पिया स्वस्थ हो गया। तो राजा इधर इधर से देखता है, ऐसे देखता है, हाँ घुमाता है, राजन क्या देख रहे हो? महात्मा ने पूछा, बोला देख रहा हूं यहां तो घोड़ा तो दिखता नहीं, घोड़ा का लीज इतना बड़ा डूंगर बन गया, डूंगर कहां से आया? बोले राजन आपका दिया हुआ भिक्षा भिक्षा ये अभिवृद्धि को प्राप्त हो रहा है, फलिपति हो रहा है। कैसे भिक्षा? एक बार मैं आपके घर में गया था ना, नारायण हरि की आवाज लगाई, जो आपने कहा हमारे पास तो घोड़ा के लेट के सिवा दूसरा है नहीं। हमने कहा जो भी है तेरे हाथ में दे दे, तो तुमने दिया भिक्षा के रखे। ये मूलधन बढ़ रहा है, मूलधन जो है ना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। आपको खाना पड़ेगा एक दिन। राजा घबरा गया, राजा डर गया, इतना घोड़ा का लेट खाना पड़ेगा। बोले राजन जो जो देता है एक ही न सतम सते न सहस्रम, एक देता सौ मिलता है, सौ में हजारों मिलता है। खेत में एक मुट्ठी अनाज डालो दस मुट्ठी का अनाज खाने को मिलता है। एक किलो अनाज के बीज बोगे, पांच किलो बीज बोगे, पचास किलो खाए, पचास किलो मिलता है कि नहीं मिलता है। तो दिया हुआ वस्तु कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, वो मूलधन को साथ साथ ब्याज के साथ लेकर के आता है। इसलिए राजन तुम्हारा दिया हुआ जो दान का फल है ये भिक्षा बन गया है। हाँ, समझ में आया? ये ऐसे खेत रूपी जो है ना, शरीर रूपी जो खेत है, इसका नाम गीता के शुरू शुरू में बताया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये धर्म क्षेत्र धर्म कर्म करने के लिए नहीं, धर्म कर्म करने के लिए है। हाँ, इसलिए धर्म करो, धर्म करो कहते ना, ग्रहण छोड़ा सूटे ग्रहण करो दान, चिल्लाता है कि नहीं ग्रहण के दिनों में, दे दान सूटे ग्रहण। ऐसे नहीं है, भगवान ने प्रेरणा दी है, सुनो 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 मनुष्य, दान करो दान करो दान करो, क्यों ग्रहण छूटा, ग्रहण से सूटने से दान करता है। ये बात बताता है कि नहीं, हमको जागाता है। वो चिल्लाता नहीं, वो भगवान उसके बीच में बैठ करके हमको जगाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ ग्रहण छूटने से ग्रहण के बीच में अध्यय कुरुक्षेत्र में एक सूर्य कुंड है, वहां ग्रहण के दिनों में स्नान किया जाता है सूर्य कुंड में। आपको गया होता पता चलेगा, ग्रहण के दिनों में वहां बहुत बड़ा भारी मेला लगता है, बहुत बड़ा भारी मेला। हाँ, तो सूर्य कुंड में स्नान करते भगवान के बाप पिताजी जो है ना वसुदेव जी आदि गए थे वहां, वहां स्नान करके आए सूर्य कुंड में ग्रहण के दिनों में। तो कहने का मतलब है ग्रहण के समय में जो चिल्लाता है ना गरीब लोग, दान करो दान करो दान करो, छूटे ग्रहण छूटा ग्रहण छूटा दान करो, तो ऐसे महाराज जो दान करने के बीच विषय में बतलाता है ना, तो थोड़ा देने से बहुत मिलता है। एक न सतम सते न सहस्रम, मुट्ठी भर अन्न से, मुट्ठी भर अन्न से जो हंडा भर अन्न खाना पड़ता मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इसीलिए राजन तुम भी, तुमको भी इसको खाना पड़ेगा। राजा घबरा गया, महाराज को सिद्ध समझ करके उनके चरणों में गिरा। महाराज हमको क्षमा करो, हम अज्ञानी है, अभी अविवेकी है, अबोध है, अज्ञान के कारण ऐसा हमने कर दिया, हमको माफ करो कुछ करो। बोले राजन एक बात हो सकता है। बोले क्या? बोले ब्याज तो मूल, ब्याज तो निवृत्त हो सकता है पर मूल खाना पड़ेगा, ब्याज मूल नहीं जाता है। इसीलिए बोलना तलवार के घाव सुई के घाव से जाता है। हम जो सुई खाते हैं ना, इंजेक्शन लेते हैं ना, ये इंजेक्शन तलवार के घाव से बचने के लिए इंजेक्शन ले रहे हैं। कभी किसी को तलवार से मार करके आया होगा, अभी भगवान ने कहा इंजेक्शन ले, इंजेक्शन लेते कि नहीं? जो इंश्योरेंस लेता है फलाना लेते, क्यों लेते? बीमारी होते क्यों लेते? वो उसका बदला ले रहे हैं, मूल का शोधन हो रहा है। तो इसी के लिए बोला है किसको? महात्मा ने राजा को बोला है, जो तुम्हारा मूल तो खाना ही पड़ेगा, मूल जाएगा नहीं, पर ब्याज मुक्त हो सकता है, मैं जैसा कहूं ऐसा करोगे तो। तो बोले महाराज तब से मूल तो या ब्याज तो निवृत्त कर दो। बोले जैसा कहूं ऐसा करोगे तो ठीक है, आप जैसा कहोगे ऐसा करो। कहे ना विपत्ति में पड़ने पर गाधा को भी बाप बुलाया जाता है, और संपत्ति में बाप भी गाधा बन जाता है। संपत्ति है ना, अच्छा समय है ना, शरीर में ताकत हो, पैसा हो, पढ़ाना हो, ढमका, तो बाप को भी बाप नहीं समझता है, गुरु को गुरु नहीं समझता है, आचार्य को आचार्य नहीं समझता है। यह उस समय उसके पास क्या है? शक्ति, अहम है, अहम अहम बाबा है। कहा बाप राय ने बार गुरु के बाद भी आचार्य के बाद भी महात्मा के बाद भी नहीं मानेगा। और जब अहम भाव घट जाता है ना, अहम भाव कम हो जाता है ना, धन चला गया, जवानी चला गई, रोग चला गया, फलाना चला गया, शादी चला गया, संबंधी कम हो गया, कोई पूछता नहीं ताता नहीं, तो कैसा हो जाता आदमी जो मेरे जैसे लकड़ी लेकर चलता है। देखा नहीं मैं लकड़ी लेकर आया, क्यों ऐसा होता है? किसी समय में दौड़ करके केदारनाथ बद्रीनाथ में मैंने 28 दिन में केदार बद्री पैदल यात्रा करे, हरिद्वार से यात्रा करे आया, अभी यहां से एक माला यात्रा नहीं कर पा रहा है। वही शरीर तो महाराज मोल भलाई खा लो, ब्याज मुक्त कर दो। वो ब्याज मुक्त ऐसा होगा, तुम राजधानी में जाओ, राजधानी में जा करके प्रजा से कहो मैंने महात्मा को भिक्षा के रूप में घोड़ा का ले दिया था। तो ऐसा करने से क्या होगा, पब्लिक सुनेगा, जनता सुनेगा, तुम्हारी प्रजा सुनेगा, सुन करके निंदा करेगा, निंदा करेगा। तो निंदा करने से क्या होगा, जो एक दूसरे के कहेगा निंदा करते करते तुम्हारा ब्यास, इसीलिए निंदक दूर न कीजिए, कीजिए आदर मान। जो कोई निंदा करता है उसका निंदक को दूर मत करो, उसको आदर दो। क्यों? निंदा करते करते तुम्हारा पाप दूरा देगा। हाँ, इसलिए कहने का मतलब इस शरीर का नाम धर्म क्षेत्र रखा, इसका नाम खेत रखा, भगवान ने इस शरीर का नाम खेत रखा। इदम स्वर्जम कुंते क्षेत्र मित्या भी दिए थे, ये कुंती नंदन मेरे प्यारे भाई अर्जुन ने इस शरीर को खेत समझ देना, खेत समझ करके इसका सदुपयोग करना, है नहीं बात, इसका सदुपयोग करना। सदुपयोग समझ में आए ना, खाने पीने का नहीं आए, वो तो खाना पीना तो स्वाभाविक है। खेत सब खेत तो किसान भी समझता है, खेत किसको कहते नहीं, किसान नहीं समझता खेत किसको कहते। अरे जिसमें बीज बोता है उसका नाम खेत है, और किसान को जो अच्छा अच्छा गेहूं खाना होगा तो किसान क्या बने बोएगा, मकाई बोएगा, गेहूं बोएगा कि नहीं? इसमें इतना खेत में गेहूं बो, इतना में मकाई बो, इतना में ज्वार बो, इतना में फलाना बो, उसके हिसाब रहता है खेती का। ऐसे हमारे को क्या करना पड़ेगा, शरीर भी खेत में क्या बोना है, धर्म बोना अधर्म बोना है। तो अधर्म रूपी खेत में खेत को जो जानता है उसका नाम है क्षेत्र। तुम शरीर नहीं समझना अपने को, भगवान बोलता है अरे भाई तू अपने को मैंने खेत कह दिया, और खेत को जानता है क्षेत्र का, तू अपने को शरीर नहीं समझना है ना, तो अपने को खेत नहीं समझना, खेत को जानने वाला समझना। खेत को जानने वाला खेत से जुदा होता है, याद रखना बेटा। भगवान कहते हैं हे मेरे प्यारे भाई अर्जुन, हे पिता नंदन, ये खेत को तू जानता है ना, बोला हाँ, तो खेत से तू जुदा हो गया, तू खेत नहीं है, खेत को जानने वाला है। तो जानने वाला जो जो जिस वस्तु को जानता है उससे अलग होता है। ऐसी प्रकार तू कौन बनेगा, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रम जानाति क्षेत्रज्ञ। तो अर्जुन ने पूछा क्षेत्रज्ञ कौन है फिर, खेत को जानने वाला, तो क्षेत्र को जानने वाला तो मैं कौन हूं फिर, वो हम ये अर्जुन ने पूछा भाई क्षेत्र तू मारे को जान, तू मेरे को जान, क्षेत्रगम सा भी माम विद्धि, माम क्षेत्रगम विद्धि, क्षेत्रज्ञ तू मेरे को जान, मेरे से तू जुदा नहीं है, जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं। आप भागवत पढ़ रहे हैं ना, भागवत में आया कि नहीं पुरंदन पुरंदनी, भागवत में कथा आती है पुरंदन पुरंदनी का, क्या करता है पुरंदनी पुरंदन का? अरे पुरंदनी खाती है तो पुरंदन खाता है, पुरंदनी सोती है तो पुरंदन सोता है, पुरंदनी हंसती है तो पुरंदन हंसता है, पुरंदनी रोता है तो पुरंदनी रोती है तो पुरंदन रोता है, पुरंदनी चलता है तो पुरंदन चलता है। क्यों? दोनों एक है, दोनों एक ही है, दोनों में जुदा नहीं है। अहम भवान न संन्यस्तम तमेव अहम, अहम भवान, अहम माने मैं, तुम हो, तुम जो हो सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, जो तू है सो मैं हूँ, न तो कुछ जू है न कुछ अर्जु है, वैसा राम हो जाए, राम मैं हूं, बस राम तुम्हारे भीतर हुआ तुम राम स्वरूप हो गए। रामायण नहीं है, राम स्वरूप है। रामायण का जो सार है राम, वो तो राम स्वरूप हो, राम स्वरूप कृष्ण स्वरूप है नहीं बात। इसीलिए पराविद्या का विषय क्या हुआ, पराजया तदक्षरम अधिगम्यते, अक्षरम ब्रह्म परम स्वाभाविक उच्चते, स्वभाव अध्यात्म उच्चते। गीता के आठवां अध्याय में आया कि नहीं, अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव। तो अक्षर को अक्षर ब्रह्म कौन आए, अक्षरम ब्रह्म परमम, परम ब्रह्म को अक्षर कहते, परम ब्रह्म को अक्षर कहते, जो क्षर ना हो। क्षीणोती जो क्षेत्रम, क्षेत्र अक्षर है और तुम अक्षर हो। इसीलिए यहां तक देखना, पराविद्या अपराविद्या का विषय, पराविद्या का विषय है परमात्मा, अपराविद्या का विषय संसार। तो संसार से बुद्धि को हटा करके परमात्मा के में लगाना, यही जो है ना सत्संगियों का काम है। सत्संग के में कि अहर निशम किम परिचिंतनीयम, शंकराचार्य महाराज से पूछा था किसी ने, अहर निशम किम परिचिंतनीयम, दिन रात किसका चिंतन करना चाहिए। संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्वम, संसार मिथ्या, आत्मतत्व कल्याणमय, आत्मतत्व का सत्य समझकर चिंतन करो। अर्थात दो तरफ दो वस्तु, एक आत्मतत्व है एक अनात्म तत्व है। अनात्मा हुआ संसार, आत्मा हुआ ब्रह्म, ये दोनों तरफ दो वस्तु है। इसी बात को पराविद्या अपराविद्या बतला दिया। अपराविद्या की तरफ से बुद्धि को हटा करके, संसार की तरफ बुद्धि हटा करके परमात्मा विषय में पराविद्या की तरफ ले चलो। हरि ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।